ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी दो दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।
यह प्रधानमंत्री मोदी का पिछले एक दशक में पहला कनाडा दौरा है। 2015 में उनकी पिछली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। भारत कनाडा संबंधों को मजबूत जनसंपर्क, बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों, भारतीय छात्रों की मजबूत उपस्थिति तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की प्रचुर संभावनाओं द्वारा बल मिलता है। विश्व भर में भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा सबसे प्रसिद्ध बसेरों में से एक रहा और इसकी आबादी का लगभग 4.5% है। इसमें भारतीय मूल के लगभग 1.8 मिलियन कनाडाई और 1 मिलियन अनिवासी भारतीय शामिल है। सुपर्णा साइकिया के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
G7 देशों के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। G7 देशों ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। ईरान और इसराइल आज लगातार 5वें दिन भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों देशों में फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में नागरिकों को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने इसराइली हमलों के जवाब में 2 बार मिसाइलों से हमले किए। इसराइल की सेना ने दावा किया कि उसने रात भर के हमले में ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी सहयोगी अली शादमानी को मार गिराया। ईरान में संघर्ष शुरू होने के बाद से कम 224 लोग मारे गए हैं, जबकि इसराइल में 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। पश्चिम एशिया में हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि दक्षिणी गजा में सहायता वितरण स्थल के पास इसराइली सेना की गोलीबारी में 51 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 200 लोग घायल हो गए हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लगभग 162 डीएनए नमूनों की अब तक पहचान की जा चुकी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर फॉरेंसिक और कानूनी औपचारिकताओं में तेजी ला रही है। इस बीच अहमदाबाद से लंदन के लिए एक नए कोड के साथ एयर इंडिया की उड़ान आज विमान उपलब्ध न होने के कारण रद्द कर दी गई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए कृषि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति महाएग्री AI 2025-29 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव AI, ड्रोन, कंप्यूटरीकृत दृष्टिकोण, रोबोटिक्स और पूर्वानुमानित विश्लेषण के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। भारतीय सेना का एक दस्ता भारत फ्रांस द्विवर्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 8वें संस्करण में भाग लेगा। यह अभ्यास अगले महीने की 18 तारीख से फ्रांस के ला वेलेरी स्थित कैंप लार्जेक में आयोजित किया जाएगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की महिला टीम आज और कल अर्जेंटीना की महिला टीम के साथ खेलेगी। कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारत अब अर्जेंटीना के साथ शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल करना चाहेगा। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में आज तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और देश के कुछ अन्य भागों में भी आंधी के साथ बहुत तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली NCR क्षेत्र में आज तीसरे पहर कुछ स्थानों पर वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।